हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सर्प महाराज अपनी प्रेमिका सर्पनी से मिलने गए, तभी काली शक्तियों के गुरु की तपस्या भंग हो गई, जिससे क्रोधित होकर काली शक्तियों के गुरु ने सर्प महाराज को श्राप दिया कि जिसकी मोहब्बत में उसने तपस्या भंग की है वो उससे बिछड़ जाएगी और वो हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। वो उसके शरीर का पान कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वे अपनी सर्पनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करते थे। उसके बगैर रहने के बारे में उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा था और इस श्राप के कारण वे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो सकते थे। ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी। उन्होंने उसी वक्त काली शक्तियों के गुरु के पैर पकड़ लिए और नाक रगड़कर माफ़ी मांगने लगे। तभी काली शक्तियों के गुरु के मन में लालच आया। वो अच्छी तरह जानते थे कि सर्प महाराज आम इंसान नहीं, इच्छाधारी नाग हैं और वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं, और आगे भविष्य में हो सकता है कि जिन महाराज के परिवार से बदला लेने के लिए सर्प महाराज उसका साथ दे और वो उनके काम आ सकता है। तभी काली शक्तियों के गुरु ने सर्प महाराज से एक वचन लिया, जब तक तुम मेरा कहा हुआ काम नहीं कर देते तब तक तुम अपने पूरे परिवार समेत इस काली पहाड़ी पर ही रहोगे, और अगर तुमने काली पहाड़ी से जाने की सोची या कुछ भी उल्टा करने की सोची या मुझे धोखा देने के बारे में ख्याल आया तो उसी वक्त इस काली पहाड़ी से भागते ही तुम्हारी प्रेमिका की मौत हो जाएगी। इसलिए तुम केवल इस पहाड़ी पर ही अपने परिवार के साथ रह सकते हो। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ जो भी इस पहाड़ी से बाहर जाएगा उसकी भी मौत हो जाएगी। काली शक्ति के गुरु का ऐसा श्राप सुनकर सर्प महाराज बहुत दुखी हुए। उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि अनजाने में उन्होंने अपने पूरे परिवार को बंधन में बांध लिया था। उनके पूरे परिवार का नाश हो चुका था और अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे अपने पूरे परिवार समेत उस काली पहाड़ी पर रहने लगे। हालांकि उनका अच्छा खासा आलीशान घर था, सब कुछ था, लेकिन अब वे एक श्राप के चलते उस बंधन में बंध गए थे। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे चाहकर भी उस पहाड़ी से कहीं नहीं भाग सकते थे, क्योंकि वे अपनी सर्पनी से बहुत प्रेम करते थे। अगर उनकी वजह से उनकी प्रेमिका को कुछ भी हो जाता तो वे खुद को भी खत्म कर लेते। वे सब कुछ सह सकते थे, लेकिन अपनी प्रेमिका से जुदा होना उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था, इसलिए वे अपने पूरे परिवार समेत वहां रहने लगे। अब उन्हें केवल उसी दिन का इंतजार था जिस दिन काली शक्तियों का गुरु उन्हें काम करने के लिए कहेगा, और काम करने के बाद वे सब लोग हमेशा के लिए उस श्राप से आज़ाद हो जाएंगे। तभी अमित को एक शरारत सूझी। अमित ने सर्प महाराज से कहा, आपकी महारानी दिखाई नहीं दे रही है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे उनसे नहीं मिलवाएंगे? अमित की आंखों में हवस सर्प महाराज साफ साफ देख सकते थे। अगर वो अपने इलाके में होते और उनकी महारानी के बारे में किसी ने ऐसी बात कही होती तो वो उसे खतरनाक मौत दे देते, लेकिन अभी वे श्राप के कारण मजबूर थे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने बड़े विनम्र तरीके से अमित से कहा, जी महारानी जी यहाँ नहीं हैं, वे किसी क्रिया से पास वाले गांव गई हैं। सर्पनी को उस काली पहाड़ी से कहीं और जाने की इजाज़त नहीं थी, उसने उसे पहाड़ी के आसपास ही छुपा दिया था, क्योंकि उस पहाड़ी के पास के इलाके में केवल वे सांप जा सकते थे, उसके अलावा वे और कहीं नहीं जा सकते थे। लेकिन इस बात का अमित को दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था। अमित ने कहा, ठीक है, तो जब वे आएंगी तो आप हमें उनसे ज़रूर मिलवाएंगे, तब तक हम उनका इंतज़ार करेंगे, और हाँ सर्प महाराज जी, आज हम उनसे मिले बिना नहीं जाएंगे। ऐसा कहते हुए उसने बदतमीजी से अपने होठों पर हाथ फेरा। थोड़ी देर बाद एक सेवक आया और कहा कि काली शक्तियों के गुरु अमित को बुला रहे हैं। जैसे ही अमित ने ये सुना वो मुस्कुराने लगा, क्योंकि आखिरकार उसके गुरु ने उसे बुला लिया था और वो उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर विक्रांत रंधावा ऑफिस का सारा काम खत्म होने के बाद जल्दी से अमन के बंगले की ओर रवाना हो चुका था, क्योंकि विक्रांत को लग रहा था कि वो घर जाकर तारा का चेहरा देखेगा, क्योंकि आज सुबह से ही उसने तारा का चेहरा नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो सब कुछ सह सकता था लेकिन तारा से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अमन के ऑफिस को भी इसीलिए ज्वाइन किया था कि तारा उसके साथ रहेगी और वो उसे ऑफिस के बहाने से देख लेगा, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। विक्रांत केवल एक सही मौके की तलाश में था कि कब वो हमेशा के लिए अमन को तारा से अलग कर दे, लेकिन अभी तक वो मौका उसे नहीं मिल पाया था। लेकिन विक्रांत यही सोच रहा था कि जल्दी ही उसे वो मौका मिलेगा और वो जिन महाराज अमन को जान से मार डालेगा। विक्रांत रंधावा मन ही मन अपना प्लान बना रहा था। वो घर की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि वो गायब होकर एक पल में भी वहां पहुंच सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अमन ने उसके लिए गाड़ी छोड़ कर गया था। ये बात विक्रांत रंधावा को बहुत बुरी लगी थी। हालांकि अमन को यही लगता था कि विक्रांत रंधावा एक मामूली इंसान है और वो उसका बचपन का दोस्त है, लेकिन उसे इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि जिस बचपन के दोस्त पर वो इतना भरोसा कर रहा है वो असल में उसकी बीवी का दुश्मन है। वो वहाँ सिर्फ उसकी बीवी के शरीर को पाने के लिए आया है और अगर वो इस चीज में कामयाब हो गया तो तारा हमेशा हमेशा के लिए अमन से दूर हो जाएगी। वहीं अमन जल्दी ही अपने बंगले में पहुंच गया था और बंगले में जाते ही उसने तारा को आवाज लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन तारा तो अपने कमरे में तैयार होने गई हुई थी, लेकिन बंगले में घुसते ही उसे हॉल में करिश्मा जी मिल गईं। करिश्मा जी ने अमन को इस तरह से तारा तारा चिल्लाते हुए देखकर उसके पास जाकर कहा, क्या हुआ बेटा, इस तरह से पूरे घर में तारा क्यों चिल्ला रहे हो? आखिर क्या मसला है? तुम्हें पता है ना, तारा ऊपर अपने कमरे में है, तो इस तरह से चिल्लाने का क्या मतलब है? लेकिन जैसे ही उन्होंने अमन के चेहरे को गौर से देखा तो उन्हें एक पल भी नहीं लगा ये समझने में कि जरूर कुछ न कुछ बात थी जो अमन को परेशान कर रही थी। तब करिश्मा जी ने हल्के से अमन के गाल को छुआ और बोला, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो? आखिर तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना क्यों आ रहा है और तुम्हारी आंखों में इतना डर मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? और तुम एक शक्तिशाली जिन महाराज हो, इतने शक्तिशाली जिन महाराज होकर तुम्हारी आंखों में डर, ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही है बेटा। बताओ क्या बात है? अपनी माँ को इतना प्यार से पूछते हुए देखो अमन अपने आप को रोक नहीं पाया। वो उनका हाथ पकड़कर फपक फपक कर रो पड़ा। अमन को इस तरह से रोता हुआ देखकर करिश्मा पूरी तरह से घबरा गई और बहुत तेज आवाज में बोली, तारा बेटी जल्दी आ, तारा बेटी जल्दी आ। तारा ने जैसे ही करिश्मा जी की इस तरह की घबराने वाली आवाज सुनी वो परेशान हो गई। वो कपड़े तो बदल चुकी थी लेकिन वो अपने बालों को कंघी कर रही थी। उसने जल्दी से कंघी फेंक कर फटाफट से नीचे आने लगी और जैसे ही उसने अमन को इस तरह से करिश्मा जी का हाथ पकड़कर रोते हुए देखा तो वो पूरी तरह से परेशान हो गई और जल्दी से अमन के पास जाकर उसका दूसरा हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ अमन सर, क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? अमन की हालत देखकर तारा बुरी तरह से घबरा गई। उसे भी अब कुछ डर सा लगने लगा था
कि आखिर अमन इस तरह से क्यों रो रहा था। तभी तारा को अपने करीब पाकर अमन ने करिश्मा जी का हाथ छोड़ दिया और तारा के मुंह को अपने दोनों हाथों में पकड़कर बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा अपने आसपास रखूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा था। वो तो बस बेख्याली से बोल रहा था। तुम ठीक रहना, मैं तुम्हें अपने आप से बिल्कुल भी दूर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकता हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। अमन को इस तरह से रोता हुआ और बोलता हुआ देखकर तारा बुरी तरह से हैरान हो गई और उसकी भी आंखों के किनारे भीग गए थे। उसकी भी आंखों से आंसू निकलने को तैयार थे, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो इस तरह से अमन के सामने रोई तो वो और भी ज्यादा रो सकता था, क्योंकि उसे अमन काफी ज्यादा टूटा हुआ सा लग रहा था।